हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। मॉल में काम करने वाले स्टाफ भी ये सारा नज़ारा देखकर फुसफुसा रहे थे। इतनी शॉपिंग तो शायद किसी सेलिब्रिटी ने भी एक साथ नहीं की होगी। सिद्धार्थ का अंदाज साफ कह रहा था, वो सिर्फ शॉपिंग नहीं कर रहा था, वो एक संदेश दे रहा था। वीआईपी क्षेत्र में क्योंकि स्टार्टिंग की ड्रेस की प्राइस ही लाखों से शुरू होती थी, और अब जिस तरीके से वो लगातार सारी की सारी चीज़ें देख रहे थे, महंगी साड़ियाँ, एक्सपेंसिव गाउन और डिज़ाइनर ड्रेस, सब कुछ सिद्धार्थ खुराना आकांक्षा के लिए सिलेक्ट कर रहा था, तो वाकई ये नज़ारा वहाँ मौजूद सभी लोगों के लिए हैरानी से भरा हुआ था। हर कोई आकांक्षा की किस्मत पर रश्क कर रहा था। वहीं आकांक्षा के चेहरे की मुस्कान कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और मन ही मन बोली, मुझे तो लगा था कि झलक के आने के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, लेकिन सिद्धार्थ खुराना के अंदर का प्यार मेरे लिए यूं बरस जाएगा, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कहीं ना कहीं वो सारी ड्रेस देखकर बोली थी, ऑलरेडी तुम मेरे लिए 15 ड्रेस ले चुके हो और ये सब काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, प्लीज़ अब रहने दो, मैं क्या करूँगी इतनी सारी ड्रेस का। तभी सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा था, मैं चाहता हूँ कि एक बार एक ड्रेस पहनने के बाद तुम उसे दोबारा कभी ना पहनो। ये सुनकर आकांक्षा तुरंत बिना किसी झिझक के सिद्धार्थ के सीने से जा लगी थी और उसके गालों पर जोरदार किस करते हुए बोली थी, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ, इतना प्यार कि तुम सोच भी नहीं सकते। ये कहकर वो लगातार सिद्धार्थ को मस्का लगाने लगी थी, लेकिन सिद्धार्थ ने बदले में अपना चेहरा बिना किसी इमोशन के ही रखा था। काफ़ी सारे फैंसी आइटम लेने के बाद उन्होंने शांत माहौल में साथ में लंच किया और बड़े ही अच्छे माहौल में एक दूसरे के साथ खाना खाया। वहाँ से सीधा वो उसे उसके हाउस तक छोड़ आया और उसके बाद खुद सीधे खुराना मेंशन के लिए रवाना हो गया। सिद्धार्थ के दिल में एक अजीब सा खालीपन था। वो मन ही मन सोच रहा था, आकांक्षा के लिए इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे इतनी अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है? वो सुकून क्यों महसूस नहीं हो रहा जो उसे होना चाहिए था? क्या ये सब कुछ उसने सिर्फ और सिर्फ झलक के लिए, जो उसके मन में कहीं ना कहीं अब भी बसी हुई थी, उसके लिए किया, या फिर वजह कुछ और थी? वो अंदर ही अंदर एक अलग तरह की जंग लड़ रहा था। फिलहाल खुराना मेंशन और ओबेरॉय मेंशन दोनों परिवार नीलामी में जाने की पूरी तैयारी में लग चुके थे। ठीक दो दिन बाद ऑक्शन होने वाला था और उस दिन का दोनों परिवारों के साथ साथ बाकी अमीर घरानों को भी बेसब्री से इंतज़ार था। खुराना परिवार तो इसी सोच में था कि जैसे ही वो नीलामी जीतेंगे और वो महंगी नेशनल धरोहर उनके घर आएगी तो समाज में उनकी इज्जत कई गुना बढ़ जाएगी। उसके बाद कोई भी खुराना परिवार पर उंगली उठाने के बारे में सोच भी नहीं सकेगा। शादी ना होने की वजह से जो तरह तरह की अफवाहें फैल रही थीं वो भी पूरी तरह खत्म हो जाएंगी। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। वहीं दूसरी ओर इस वक्त आदित्य राणा अपने घर पर मौजूद था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। थोड़ी देर बाद वो दादाजी के पास गया। दादाजी ने जल्दी ही आदित्य से माफ़ी मांगते हुए कहा, बेटा मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। तब आदित्य गुस्से में लेकिन भावुक स्वर में बोला, दादाजी आप मेरे दादा हैं, आपको मुझे डांटने का हक है, माफ़ी मांगने का नहीं। ये सुनकर दादाजी की आंखों में गर्व झलक उठा। वो बोले, वाकई तू मेरा शेर है, मेरा शेर। और बेटा, इतना सब कुछ होने के बाद मैं तुझसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि वो बहुत अच्छी लड़की है, तुझे सबसे पहले उसका दिल जीतना होगा। पता नहीं उस बेचारी बच्ची को कौन से जख्म लगे हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में वो इतनी मजबूत बन गई है। लेकिन बेटा, कहते हैं ना, प्यार हर जख्म का मरहम होता है। अगर तू उसे सच्चा प्यार देगा, उसे अपने प्यार पर यकीन दिलाएगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो तेरी बेहतरीन जीवनसाथी बनेगी और तेरे अलावा किसी और के बारे में कभी नहीं सोचेगी। दादाजी की बातें सुनकर कहीं ना कहीं एक बार फिर आदित्य की आंखों के सामने वही खूबसूरत सा चेहरा तैर गया था। तभी अचानक घर में एक अजीब सा शोर हुआ। वहां पर कोई और नहीं बल्कि कबीर और उसके साथ एक अनजान सा चेहरा राणा मेंशन में एंट्री कर चुके थे। जैसे ही वो लोग अंदर आए, आदित्य ने कबीर और उसके साथ आए शख्स को देखा और हैरानी से भर गया। वो तुरंत आगे बढ़ा और अपने चचेरे भाई को गले से लगा लिया। वो कोई और नहीं बल्कि आदित्य का छोटा भाई अभय राणा था, जो विदेश से वापस लौटा था। अभय ने तुरंत आदित्य को गले लगाया, फिर दादाजी के पास जाकर उनका हालचाल पूछा, क्योंकि वो ज्यादातर विदेश में ही रहता था। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि दादाजी की तबीयत खराब हो गई थी, वो पहली फ्लाइट पकड़कर सीधे राणा मेंशन आ गया था। कमरे का माहौल अब भावनाओं से भर चुका था और आने वाले दिनों में ये मुलाकात बहुत बड़े तूफान की शुरुआत साबित होने वाली थी। बस जानता हूँ कि आप मुझे अपना समझते ही नहीं हैं। ये कहते हुए अभय ने हल्की सी बाहर की नौटंकी शुरू कर दी थी। वहीं कबीर हल्की मुस्कुराहट के साथ दोनों दादा पोते को देख रहा था। तभी आदित्य राणा कबीर के पास आया और बोला, तुझे ये कहाँ मिल गया? कबीर ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, इसका मुझे फोन आ गया था कि ये ऑलरेडी लैंड करने वाला है। उस वक्त तू साइट देखने के लिए मिस मल्होत्रा के साथ गया हुआ था, तो मैंने तुझे डिस्टर्ब करना जरूरी नहीं समझा, इसलिए मैं सीधे एयरपोर्ट पहुंच गया और इसे लेकर यहाँ आ गया। जैसे ही कबीर ने ये कहा, आदित्य ने उसे हल्की मुस्कान के साथ थैंक यू कहा। ये सुनकर कबीर ने आंखें फाड़कर उसकी ओर देखा, तुझे क्या हो गया है? ये थैंक यू सॉरी तेरी डिक्शनरी में कब से आ गए और तू कब से सॉरी थैंक यू करने लगा? आदित्य हल्का मुस्कुराया, तूने मेरे लिए इतना कुछ किया तो क्या मैं तुझे थैंक यू भी नहीं बोल सकता? कबीर की आंखें हल्की सी नम हो गई। यार बस कर, रुलाएगा क्या? आज के दिन सारे बम एक साथ ब्लास्ट करने का इरादा है क्या? उनकी इस नोक झोंक से माहौल कुछ ही पलों में खुशनुमा हो गया। दादा से मिलने के बाद कबीर, आदित्य और अभय तीनों एक साथ कमरे में जमा हो गए और अपने ही अंदाज में छोटी सी पार्टी शुरू कर दी। वैसे तो आदित्य ड्रिंक नहीं करता था, लेकिन कभी कभार कबीर के साथ जब दर्द बहुत ज्यादा हो जाता था तो वो थोड़ा बहुत ले लिया करता था। आज भी बस औपचारिक सा एक पैग उसके हाथ में था। बातों बातों में अभय ने कबीर को छेड़ते हुए कहा, कबीर भैया कब तक आपका ये ब्रह्मचारी वाला व्रत चलेगा? कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जो आपका ये व्रत तोड़ सके। ये सुनते ही कबीर की आंखों के सामने अनामिका का चेहरा घूम गया। उसका आंख मारना, शरारती मुस्कान के साथ करीब आने की कोशिश करना, सब कुछ एक पल में याद आ गया। वो तुरंत संभलते हुए बोला, नहीं नहीं, मैंने कह दिया ना, मेरी जिंदगी में कभी कोई लड़की नहीं आएगी, मतलब नहीं आएगी, ये लड़की वड़की का चक्कर बेकार है। अभय जोर से हंस पड़ा, देख लेना भैया, जिस दिन कोई लड़की आपकी जिंदगी में आकर टिक गई ना, उसके बाद ये सारे डायलॉग भूल जाओगे। फिर उसने शरारती अंदाज में आदित्य की ओर देखा, आदित्य भाई आपको कोई लड़की पसंद आई या नहीं? इससे पहले कि आदित्य कुछ कहता, कबीर ने बात पकड़ ली, अरे इसकी तो मत पूछ, इसे लड़की पसंद भी आ गई है और जिस लड़की को ये पसंद करते हैं उसने इन्हें चांटा भी मार दिया है। क्या? अभय की आंखें गोल हो गई, सीरियसली किसी लड़की ने आदित्य भाई को चांटा मार दिया? ऐसा कैसे हो सकता है, आप मजाक कर रहे हैं।
कबीर ने सिर हिलाया, मैं मजाक नहीं कर रहा, वाकई इन्हें एक लड़की पसंद आई और उसी टाइम इन्होंने एक जोरदार चांटा भी खाया और साहब बाहर से चुपचाप डांट खाकर वापस आ गए। आदित्य बार बार इशारों से कबीर को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अभय एक्साइटेड होकर बोला, तो इस चाके वाली भाभी से तो मिलना ही पड़ेगा यार, आखिरकार कौन है वो? ये कहते हुए वो शरारत से मुस्कुराने लगा। कबीर तुरंत बोला, फिक्र क्यों करता है, मैं हूं ना, कल तुझे उससे मिलने लेकर चलूंगा। इसी खुशी में एक जाम थप्पड़ वाली भाभी के नाम, अभय ने हंसते हुए कहा। तीनों की हंसी कमरे में गूंज उठी। आदित्य भी आखिरकार मुस्कुरा दिया। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आ चुका है और ये लोग उसे मजाक में उड़ा रहे थे। अच्छी खासी ड्रिंक पार्टी के बाद सब जहां जगह मिली वहीं सो गए। वहीं अगली सुबह झलक के लिए कई चुनौतियां इंतजार कर रही थी। सबसे पहले वो सुबह सुबह ऑफिस पहुंच गई, जबकि ऑफिस टाइम भी नहीं हुआ था। आज भी ज्यादातर लोग नहीं आए थे, लेकिन झलक सुबह ही जाकर अपना सारा काम खत्म करना चाहती थी। आखिरकार वो मुंबई जाने वाली थी, वहां जाकर कितना वक्त लगेगा, कब वापस आएगी, उसे खुद नहीं पता था, इसलिए वो अपने हिसाब से सारा काम निपटा कर जाना चाहती थी। झलक ने फटाफट ऑफिस पहुंचकर काम शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद अनामिका भी ऑफिस पहुंची। उसने सोचा था कि सुबह सुबह झलक को छेड़ेगी, लेकिन केबिन में झलक को देखकर हैरान रह गई। तुम इस वक्त ऑफिस में, इतनी सुबह? झलक ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया, मुझे एक इम्पॉर्टेंट मिशन पर जाना है। अनामिका तुरंत समझ गई, ओ समझ गई मैडम, पर मैं भी साथ चलूंगी, मुझे साथ लेकर चलोगी ना? झलक ने पहली बार उसकी तरफ देखकर शांत स्वर में कहा, वहां तुम्हारी जरूरत नहीं है, जहां तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें खुद बुला लूंगी। उसकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था कि अनामिका कुछ पल के लिए चुप हो गई। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, असली तूफान अभी बाकी था।